नाम उठत नाहम बैठत नाम सोवत जागवे नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। आप अपने काम बस किसी कार्य को जा रहे हो, सफर करना पड़ रहा है, 2-3 घंटे लग गए बस में या अपने निजी वाहन में, मालिक ने याद करते जाओ काम तो करना ही है, काम तो वहां जाकर करेंगे हम, और बीच में क्या कर रहे हैं, अपनी भक्ति कर रहे हैं। ये समय बहुत है हमारे पास, तो ये हमें पता ना था कि नो भगवान मिला करे। हम तो इन लोक वेद बताने वालों के आधार से कि अमरनाथ पर चले गए, इतनी बूंदी खाइया मोह कर चुट गए बर्फ पर, कद मर गए कद डट गए कि वहां भगवान मिलेगा। कोई तपस्या करने लग गया खड़ा होकर के वैसे परमात्मा मिलेगा, फिर आम आदमी पर वैसे हिम्मत ना होगी, इसके पैर भी सूज गए, कीड़े जख्म हो गए, ऐसे भगवान मिलेगा तो हिम्मत नहीं आम आदमी की। कोई कहा करता घर त्याग देने से परमात्मा मिलता है, सभी इच्छाओं का दमन कर लेने से भगवान मिलता है, ये घर छूटे ना हमारे पे, तो हमने तो इन्हें सोचा थे ठीक है हमारे बस का कौन ही परमात्मा की प्राप्ति भक्ति, लेकिन फिर भी आत्मा नहीं रुक रही थी, फिर भी कोई ना कोई आड़ मान ले की हम ले ही रहे थे, सिंपल सी आरती कर ली कि मंदिर में माथा टेक आए निकट सी, तो इस तरह की साधना फिर भी कर ही रहे थे, लेकिन तरीका गलत होने से न तो उन पहाड़ों पत्थरों पर जाने से भगवान मिला और न ही मंदिरों में मस्जिदों में द्वारों गुरुद्वारों में जाने से चर्चों में जाने से प्रभु प्राप्त हुआ। वो तो जैसे मिलना था वैसे ही मिलेगा और वो तरीका अब मिला। तो अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि परमात्मा जब आते हैं, वेद बताते हैं, शिशु रूप धारण जब करका वो प्रकट होता परमात्मा, उसकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों द्वारा होती है। बता फिर भगवान के पहचानन में कौन सी कसर रह जाएगी, फिर दुर्भाग्य होगा उस प्राणी का जो इतने प्रमाण के बाद भी मालिक को नहीं पहचान पाता। वो तो फिर वही है कि दिक्कत के तुरंत समय का फिरा मोतिया बिंद रे, फिर वो मोतिया बिंद वाले ही रह जाएंगे। आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9। पुण्यात्माओं ये मन जो है ना, ये मन राजा, ये काल है, ये ज्योति निरंजन का एजेंट है, उसका अंश है, एक इसमें आदत है सहनशा वाली, एक चीज को एक बार चखता है फिर रिजेक्ट कर देता है, दूसरी को चखता रिजेक्ट कर देता है। जैसे गाने सुना करते पहले, फिल्मी गाना बड़ा हिट हो जाता उन्हें बार बार सुनते, और 3-4 बार सुनने के बाद यूमन राजा कहता नहीं और लगा कोई, तो इसकी आदत है या खराब, लेकिन तत्व ज्ञान से इसकी इस आदत का भी हमने समाधान करना है। अब जैसे आप जी आते हो, दास का उद्देश्य है कि आप जी को ये परमात्मा की अमर वाणी सुनाऊं, आपके ऊपर जो एक अमर वाणी के सुनने से जो असर होना है वो टेम्परेचर डाउन होना है, वो भी सर्वप्रथम करूं। और ये मन की आदत है, ये सोच लेता है कई बार कि ये सत्संग तो हमने पहले भी सुना था, गुरुजी ने पिछली बार भी सुनाया था, तो इससे क्या होता है फिर ये आनाकानी करता है मन। पुण्यात्मा जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति सुबह आहार करता है, सुबह भोजन करता है और तृप्त हो जाता है, और शाम को उसको फिर भूख लगती है तो फिर ऐसे वही आहार रोटी वही होती है, कोई चटनी मिर्च सलाद सब्जी में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, नहीं तो रोटी वही होती है। और भूख जब सही लगे ना, सब्जी का कोई रोल नहीं रहता, सूखी मिल जाए तो भी खा जाते। कहने का तात्पर्य दास का ये है कि ये जिसको भूख नहीं लगी, सुबह खा लिया शाम में भूख नहीं लग रही है, तो उसमें गड़बड़ होगी, फिर या तो उसकी कोई बदहजमी होगी या बुखार फिर सटारट हो गया, यानी भोजन में अरुचि अस्वस्थता का प्रमाण है, प्रतीक है। तो ऐसे ही आप जी के ऊपर कोई पाप कर्म का दबाव जब हो जाता है परमात्मा की वो चर्चा जो प्रतिदिन हम सुनते हैं, सुननी चाहिए, और ऐसा लगता है कि फिर भी ये तो सुन रखा है हमने, तो इससे ये आएगा समझ लेना कि आपके ऊपर कोई पाप कर्म का दबाव फेर हो गया, यानी वो बुखार स्टार्ट हो गया। उसका ट्रीटमेंट क्या है कि ना चाहते भी सुने, इस मन को लगाओ इसके अंदर, और क्या सुनेगा तो मालिक की चर्चा 100 बार लाख बार अंतिम श्वास तक भी हमने उस चर्चा को सुनना है, और तभी हमारा पूरा कोटा होगा। तो इसी प्रकार परमात्मा की जितनी बार भी महिमा सुने घनी श्रद्धा के साथ, आत्मा के अंदर इतनी विनम्रता, इतना जो है लगाव श्रद्धा बन जा, परमात्मा की चर्चा चलते ही आत्मा गदगद होने लग जाए, बकवाद ना रहे इसमें। पुण्यात्माओं, ये पिछले संस्कार थे आपके जो आज आप मालिक के चरणों में आए हो और इस ज्ञान को आप सुन पा रहे हो, ये सौभाग्य आपका, चाहे को घर बैठा सुने टीवी के माध्यम से, क्योंकि परमात्मा की दया हो रही है, अभी परमेश्वर की अमर वाणी मीडिया में भी जा रही है, पुण्यात्मा सुन रहे हैं। तो इसकी कहीं पर भी आप सुनो, कितनी बार सुनो, उतनी आपके में श्रद्धा आनी, आपके अंदर एक विशेष लगन हो जानी चाहिए, 100-100 बार सुन रखे। अब पहले तुम पुण्यकर्मी प्राणी, पहले ये दास श्री कृष्ण जी का कट्टर पुजारी, विष्णु जी इष्ट रूप में, बाकी वह साजरी पूजा सारी कराया करते, शंकर भगवान भी, गणेश जी भी, और भी कोई ठहर गया देवता बता दिया उसकी भी। तो उस समय एक छोटी सी गीता जी थी जिसमें नीचे हिंदी और ऊपर केवल संस्कृत थी, नीचे ओनली हिंदी उसके अनुवाद, तो उसको पढ़ता था। हालांकि इस पुस्तक में, गीता जी में, केवल एक सुलझा हुआ ज्ञान है, इसमें ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आत्मा पर ठेस लगा, लेकिन हम फिर भी आत्मा पर ठेस लगती है कोई कथा कहानी सुनाते हैं, वो तो एक अलग वैराग होता है, और जिनके इनमें भी विराग होता है, इन वचनों में भी विराग होता है, तो वो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी है, पिछले पुण्य बहुत ज्यादा है। तो इस गीता जी को पढ़ते पढ़ते भी आंखों में आंसू आ जाती थी, हालांकि इसमें कोई विशेष वो बात नहीं है, बस क्रियाएं बता रखी, अर्जुन तू ऐसे कर, तू कहां था, कौन था, ऐसे साधना कर, ऐसे करेगा वैसे हो जाएगा, तो वो इस तरह की पढ़ाव थे, लेकिन फिर भी आत्मा में जगह थी, क्योंकि हमारे पिछले पुण्य गणे थे, उन संस्कार से हमें परमात्मा की चर्चा सुनते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। और आज भी आपकी ये स्थिति आनी चाहिए, जब मालिक की चर्चा हो, भगवान की चर्चा, एक पेट के लिए 100 जगह झूठ बोल रहा इंसान, और ना जाने किसके आगे रह ना करता फिर है, 100 मन में चक्कर रखे, उसने न्यू बोलूंगा तो न्यू करेगा, न्यू कह दूंगा कदे नाराज हो जाए, यानी ये बकवाद नारी, और पेट फिर भी पूरा ना हो रहा। और इस मालिक की, जिसके ये पुण्य हो गए, उदय हुए भगवान की चर्चा में, आगे फिर उनको उपदेश मिल गया, अब सत्कर मान लेना, वही कार्य जो पहले मुश्किल से होते थे वो आसानी से होया करेंगे, क्योंकि बिजली का कनेक्शन लेने से पहले पशुओं का चारा भी हाथ से काटा करते थे, हाथ तो घुमा के, एक मशीन सी थी गंडा सा वो लेकर उसे, और हाथ से जल निकालते ट्यूबवेल, उसे हैंड पंप था, आटा हाथ से पीसा करती माता बहने, और बिजली कनेक्शन ले लिया तो वो कितना आसान हो गया, कट 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 कट, एक घंटे में मनोमान 20 पशुओं की सानी काट दे, चारा काट डाले। तो ऐसे ही कनेक्शन भगवान का जब सही मिल जाएगा तो आपके वो कार्य बहुत आसानी से होने लगेंगे, नहीं तो आपके पास भगवान की भक्ति है नहीं। अब कनेक्शन लेने मात्र से ही कार्य नहीं होंगे, आगे जुगाड़ अपना और कुछ करना पड़ेगा। फिर एक ये भी कारण है कि मान लीजिए किसी को लाभ नहीं हो रहा है तो उसका कनेक्शन कट चुका है, लाइट को नहीं आई, वो पावर काम नहीं कर रही है, तो उसको अपनी त्रुटि ने देखा है, मेरे से कोई ऐसी कहानी तो नहीं बनगी जो मर्यादा भंग होगी हो, जिससे मेरा कनेक्शन कट गया हो, यानी नाम खंड हो गया हो। तो मान लीजिए किसी को ज्यादा दिक्कत आ रही है, 2 कारण हो सकते हैं, प्रथम कारण तो यह है कि नाम खंड हो गया हो, दूसरा कारण यह है कि सतगुर शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तक में सूढ़ी होगा काटे में टल जा। एक भक्त उपदेश लेकर गया, रस्ते में एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई, लेकिन वो ज्ञान गणा समझ रहा था, वो नाम लेने ही यूं आया था कि मैं कत्ती सब जगह धक्के खा लिए, टीवी पर देखा पहले, फिर पुस्तक मंगाई, वो पढ़ी, उपदेश ले गया, तो वो डगमग नहीं हुआ। उसको ये भी बात याद आई कि मेरी जान जानी हो और एक टांग टूट मेरा जीवन बच गया, तो पुण्यात्माओं ऐसा ही होगा। मान ली आज ही नाम ले लिया, तो नाम लेते ही थोड़ी बात बनेगी, नाम की कमाई भी करनी है, भक्ति भी करनी है, बाकी सहारा फिर भी थोड़ा बहुत मालिक अवश्य देगा आपको। उसके लिए परमात्मा हमें बताते हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होवे, माली सीते सो घड़ा ऋतु आए फल होवे। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सीते सो घड़ा ऋतु आए फल हो। एक आम के पेड़ को पौधे को बीजा जाता है और उसके अंदर माली उसको परिपक्व करने होने तक सैकड़ों घड़े पानी के सिंचाई करता, उसकी पूजा करता है, और ऋतु आने पर जब वो बड़ा हो जाएगा, बड़ा होने पर भी ऋतु आने पर फल हो, समय आने पर फिर इतने फल लगेंगे आप भी खाओगे, रिश्तेदार भी खा लेंगे, तोड़ ले जाएंगे, और यात्री भी उसके नीचे विश्राम भी करेंगे, आम भी खा लेंगे। तो पुण्यात्माओं ऐसे ही ये भक्ति रूपी पौधा आम का ईव बीजा अपने, पहले तो बबूल बो रखा था, अन्य साधनाएं अन्य भगवान वो बबूल के पेड़ से, बबूल के पेड़ से छाया तो हो जाएगी, बाकी और कोई काम नहीं, कांटे लगेंगे, उठे तो शर्म लग जाए, आसपास टूट के पड़े पैर में गड्ढे। तो ऐसे ही है, सुख है तो दुख भी बराबर है। आम के पेड़ में कोई ऐसी हानिकारक और व्यवस्था नहीं होती, सुख ही सुख देता, ऐसे परमात्मा को ये आम का वृक्ष जानो। फॉर एग्जाम्पल, अब आप जी को वो प्रमाण दिखाते हैं जिससे हम भगवान को पहचान सकेंगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 9। अपने आत्माओं, ये जो वेदों के ठेकेदार माने जाते थे, ये महर्षि दयानंद, इस कलयुग में तो हमने ये सुना था एक महर्षि दयानंद, बाकी तो वेदों के बारे में कोई विशेष चर्चा कोई करता भी नहीं था। ये दास केवल उतना ही कहता है जितनी सच्चाई होती है। एक क्रेडिट ये दास इन आर्य समाज के आचार्यों को अवश्य देता है और इस दानंद को, महर्षि दानंद को, कि इन्होंने वेदों को जीवित रखा अभी तक। दानंद जी का क्या विधान था कि वेद एक सत्य, ये देखिए वेद सब सत विद्याओं का पुस्तक है, महर्षि दयानंद, मैं इनकी केवल इस बात को सत मानता हूं और सारी झूठ बोला करता। अभी तक वेदों को इन्होंने रखा सुरक्षित, वेद सबसे सच्चा ज्ञान है, वेद ही अच्छी पुस्तक है, लेकिन इनको स्वयं वेदों के बारे में कति ज्ञान नहीं था, वेद में ज्ञान के लिखा। अपुण्यात्मा, जिस कारण से इन्होंने सत्य को ना समझकर वेदों का अनुवाद करते समय भी गड़बड़ियां कर दी और घड़ी घड़ी कर दी, लेकिन हमारे पास ये तत्व ज्ञान रूपी एक ऐसी मास्टर की है यह सृष्टि रचना, ये याद हो जाने के बाद, इसका ज्ञान हो जाने के बाद, ये सभी सदग्रंथ चाहे किसी भाषा में है, इन्होंने अनुवाद तो कर ही रखा टूटा फूटा, फिर उससे जोड़ हम लेते हैं कि ये वास्तविकता ये है इस मंत्र का अर्थ, और फिर वही मिलता है। ये देखिएगा ऋग्वेद ऋग्वेद हिंदी भाष्य 9-10 मंडल, महर्षि दयानंद सरस्वती। प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। 2 ये इनके फोन और फैक्स ईमेल नंबर है। ये इन्होंने झूठ लिखा है कि महर्षि दानु सरस्वती ने इसका अनुवाद किया है 9 और 10 मंडल का, नहीं। फिर भी हम अपने उद्देश्य पर ही चलते हैं। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली, यहां से छपा है। ये 9 मंडल है, ये देखिएगा। ऋग्वेद भाषा बस है, अर्थ नवम मंडल, नौवा मंडल, और ये है मंत्र नंबर 1। इसमें हम ईश्वर भी इतना देखना चाहते हैं, यहां से परमात्मा का जिक्र होता है। ए सोम स्वभाव परमात्मन, है ना, परमात्मा लिखते आ रहे हैं, जहां भी कोई परमात्मा के विषय में जानकारी है। आगे देखो मंत्र नंबर 2 में भी हे परमात्मन, आप राक्षसों के हनन करने वाले हो, संपूर्ण विश्व के दृष्टा हो, सबके उत्पत्ति स्थान हो, किसी अस्त्र शस्त्र से छेदन नहीं किए जाते, गतिशील यानी चलते फिरते हो, और मध्यस्थ रूप से सर्वत्र स्थिर हो। अब देखो मध्यस्थ रूप से सर्वत्र कहा गया, कहने का भाव कि ये एक जगह स्थिर है परमात्मा, ये सर्वत्र अपनी अपनी अज्ञान सोच को साथ उड़ जाते हैं। फिर भी अब 3 नंबर मंत्र में हे परमात्मन, यानी है परमात्मा का जिक्र 3 नंबर में, और 4 नंबर में हे परमात्मन, अब 5 नंबर मंत्र में हे परमात्मन, 6 नंबर मंत्र में हे परमात्मन, 7वें में शुरू कर दिया उस पुरुष को, यहां भी परमात्मा लिखना था, उस परमात्मा को ज्ञान यज्ञ में भली प्रकार ग्रहण करती है। उस पुरुष ने के कौन के करेगा बता पुरुष का। अब यहां देखो 8वें में उस पुरुष को, यहां पुरुष लिखना शुरू कर दिया उलझाने के लिए, कोई ना सोचा था कोई व्यक्ति के बारे में बोल रखा होगा, उस परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती है, जैसे ईव परिस्थिति बिगड़ गई थी पुण्यात्माओं, जैसे गीता जी में कहा कि जब भी धर्म के अंदर धार्मिकता में कुछ गिरावट आती है, तब मैं वो काल कहता मैं अपने अंश अवतार प्रकट करता हूं, भेजता हूं। तो इसी प्रकार यहां भी कहा जा रहा है कि पूर्ण परमात्मा को कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिनसे प्रेरित होकर के परमात्मा यहां आता है और उस यथार्थ ज्ञान को बता के और गिरते हुए समाज के सत्र को फिर स्टेबल करता है। ये देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 8 और फिर 9 पढ़ेंगे। यहां ये बताना चाह रहा है दास कि ये यहां उस पुरुष को लिख दिया, उस परमात्मन को क्यों ना लिखा, उस परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, यानी कोई ऐसी परिस्थिति उग्र परिस्थितियां हो जाती हैं जिस कारण से वो और भासमान शरीर को यानी तेजोमय शरीर को वह परमात्मा प्राप्त होता है। यहां पुरुष लिख दिया अड़ाने के लिए, उलझाने के लिए, बुलाने के लिए, बहकाने के लिए, उस वो परमात्मा प्राप्त होता है। यानी कोई तेजोमय शरीर, तेज पुंज तन दे धरकर, अन्य दे धरकर, इस विध हमको भेंट ही भगवान ने बताया कि तेज पुंज अन्य दे धरकर, इस विध हमको भेंट ही, इस प्रकार हमें आकर मालिक मिलता है तेज पुंज का भासमान शरीर धारण करके अन्य। अब 9वां देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 का ये मंत्र नंबर 9, इसमें लिखा है, ये सिसुम शब्द है, सिसुम अभी इमम अधन्या उत्सृणति धेनवः सिसुम सोम इंद्राय पातवे, उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को अड़ाजिया डंगा। इन अपनी इस उलझाने से तात्पर्य था कि लोग समझ ना सके हमारी अज्ञान सोच को क्योंकि दानंद जी नहीं मानता परमात्मा साकार है। वेद स्पष्ट बता रहे हैं वो साकार है। देखो उस सोमम माने परमात्मन को, देखो यहां ये खुद सोम माने परमात्मा क्यों ना लिख दिया, दिमाग खराब कर रखा है। ये देखो ये नौमे मंडल का प्रथम सूक्त का ये प्रथम ही मंत्र है। इसमें सोम माने सोम स्वभाव वाले परमात्मन, तो यहां के बिजली पड़े थे जैन लिख दिया होते ये। इमम माने उस सोम स्वभाव वाले परमात्मा को, या परमात्मा को ना लिखा है, बकवाद करने का मतलब था नहीं। शिशुम यानी बाल्य अवस्था में, ये इन कुमार अवस्था में ही, अभी अधन्या, अधन्या माने बिना दनाई, बिना गर्भवती, अभी माने पूर्ण रूप से, अभी अधन्या का अर्थ होता कुंवारी गाय, धेनु कुंवारी यानी धेनु माने गौवे, अंड सीधा सा अर्थ बन जाता संस्कृत भी हम समझ सकते को अनएजुकेटेड थोड़े परमात्मा ने या दया बख्शी हमारे पे। उस सोम स्वभाव वाले परमात्मा को यानी शील स्वभाव वाले परमात्मा को शिशु रूप में, जब कुमार अवस्था में बचपन में जब शिशु रूप धारण करके आता है, उसकी परवरिश सब प्रकार से अभी अधन्या, सब प्रकार से अहिंसन इंसनीय यानी पूर्ण रूपेण कुमारी, पूर्ण रूपेण यानी अनटच्ड, अभी अधन्य का अर्थ ही होता बिना दनाई। एक तो बिना दनाई हुआ है, जैसे पहले भी गऊ बच्चा दे रखा फिर ना नए दूध हुई उसको भी अधन्य कह देते हैं बिना दनाई, लेकिन अभी अधन्य यानी कत्ती कुमारी कभी भी टच ना की, ये देख अनटच्ड। अभी माने सब प्रकार से, अधन्य माने बिना दनाई, सब प्रकार यानी कुंवारी, गौवे धेनव माने गौवे तृप्त करती है यानी उसकी उसके जो है ना पालन पोषण का जो क्रिया है इन कुंवारी गायों से होता है। ठीक है, अब ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 तक आपने देखा, अब 10वें में और देखते हैं। 9 हो गया, ये 10वां। अब 10वें में है विज्ञानी पुरुष, इसी भाव से वो परमात्मा, या परमात्मा लिखना परमात्मा, इसी भाव से संपूर्ण अज्ञानों को नाश करता है, इसी श्रद्धा के भाव से सूरवीर अपनी वीरता मदमस्त होकर ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। इन्होंने जो अनुवाद करने की चेष्टा की है बिल्कुल अड़ंगा करना चाहा है, फिर भी सच्चाई छुपा नहीं करती है। कहते हैं चोर चरावे तुम्बड़ी गड्ढे पानी में, और वो गड्ढे हुआ ऊपरावे ना सच्चाई छनी ना। एक तुम्बा होता है सूखा तुम्बा, उसने जल में छुपाने की चेष्टा करता है चोर, तो वो नीचे छोड़का हुआ ऊपर पावे। तो इन्होंने तो तुम्बे को जब पानी में डालने की चेष्टा की थी, लेकिन ये भूल गए थे कि पानी में तुम्बा कभी छुप नहीं सकता। यानी सदग्रंथों की सच्चाई गलत अनुवाद करने से समाप्त नहीं हो जाती। ये देखिएगा और इसका समर्थन ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 31 में देखते हैं। अनुसत शिशुम रिहन्ति मते, इसका क्या अर्थ है? सबद ब्रह्म का आधार परमात्मा, यानी सबद आवाज करता हुआ ऊंची आवाज में बोलने वाला भगवान, वाणी वर्णीय उपासकों को भली भांति प्राप्त होता है। जो परमात्मन बलों का दाता है, वह सबको सब सता में लीन करने वाला परमात्मा उपासनाओं में शब्दमान होता है। ये अर्थ इसका कुछ और है। उपासक लोग, हम अपना अर्थ पढ़ेंगे, इन्होंने क्या कर दिया, उसकी उपासना मगन हुए भली भांति उसकी स्तुति करते हैं। उस शब्द ब्रह्म को, उस अविनाशी परमात्मा के आदि कारण ब्रह्म को जो शिशुम सबका लक्ष्य स्थान बता शिशु का अर्थ किसी ने देख लो शिशु मानते बालक को है शिशुम उसको सुमति लोग साक्षात्कार करते हैं। इसका अर्थ है वो परमात्मा जो शिशु रूप धारण करके आता है उसको सुमति लोग अच्छे बुद्धि वाले अच्छे विचारों वाले लोग उसका साक्षात्कार करते हैं उसको पहचानते हैं दर्शन करते हैं। अब पुण्यात्मा परमात्मा की भक्ति और उसको प्राप्त करना ये कठिन काम नहीं बहुत ही आसान। अपना दैनिक काम करो नेक नीति से करो विश्वास परमात्मा पर रखो और परमात्मा फिर आपके कार्यों को ऐसे निमटावेगा आप सोच भी नहीं सकते। कहते हैं कल्पे कारण कौन है तो हम क्या कर रहे हैं जैसे किसान होगा ना वो बीज बो के महीने 20 दिन देखने भी नहीं जाता अपने खेत में उसको पता कि इतने दिन के बाद थोड़ा बहुत ये कितने कितने को पौधा दिखाई देगा और हम नाम लेते ही नहीं सोचा हाँ कल ही मारे रोज चमत्कार शुरू हो जाए तो ये भी एक धारणा हमारी कमजोर है। परमात्मा कहते हैं कल आप कोई नाम जाप करते हो भक्ति लिए कोई कष्ट निवारण के लिए आया है कोई किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए फिर समय दो मालिक को धीरे धीरे ये भी एक फार्मूला बना लो धीरे धीरे रेवना धीरे सब कुछ हो माली सी चौ गुड़ा समय आए फलो अन्ना हो तो मुझे बताना पर मर्यादा के अंदर रहना। तो हम ये सोच बैठते हैं कि आज ही कोई वस्तु मिली है कल ही हमें उसकी प्राप्ति हो उसके लिए समय चाहिए आप जी को। परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है कल कर सेवा नहीं काम और मन इच्छा फल देवेगा जो पड़े दनीते काम रोज कल्पना करने कोई लाभ नहीं जैसे बताया गया इसकी डट के भक्ति करो बगैर किसी मनोकामना पूर्णा के लिए बगैर किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए जो साधना की जाती है जो दान किए जाते हैं वो अत्यधिक लाभदायक होते हैं। और फिर कहते हैं जब समय आवेगा भगवान का जहां रोल शुरू होगा अब जैसे चाहे प्रधानमंत्री है और उसका पुत्र है और सफर कर रहे हैं एक्सीडेंट होने वाला है हो गया प्रधानमंत्री भी मर जाता है और परिवार भी मर जाता है उसके सहयोगी भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते तो हम कहने का भाव ये है दास का कि हम इन राजनेताओं और प्रधानमंत्री को तो समर्थ शक्ति मानते हैं इसलिए इनके पीछे पीछे चक्कर काटे हैं। और यदि हम परमात्मा जो सबका रक्षक है सबका दाता है उनको भूल गए हम इस आन क्रियाओं में फंस गए और वहां से कोई लाभ नहीं होता इसलिए हम एक तो उन राजनेताओं को बाधा करते हैं उनका वो विकास कार्य करें तो हमारे किसी जुगाड़ जुड़ में लगे रहे। आप परमात्मा की तरफ चलो राजा होना आवश्यक है पर नेक हो नीतिवान हो धार्मिक हो भगवान से डरने वाला हो तो राजा तो आवश्यक है क्योंकि जैसे खेत में बाढ़ आवश्यक होती है नदर डांगर खराब कर देते हैं तो ऐसे निकम्मी आत्माओं के लिए राजा होता है अच्छी आत्माओं को सुरक्षा रखता है और जो राजा ही दुष्ट होता है वो अच्छी आत्माओं को दुष्ट दुखी करता है और नेकों को पालता है तो वो महान नीच व्यक्ति होता है। तो राजा का होना आवश्यक है लेकिन भगवान ही करे हमारा सब कुछ परमात्मा ही करे और करता है निमित्त वो किसी को भी बनाए ये याद रख लेना। तो हमने मालिक पर ज्यादा ध्यान देना है और इन राजनेताओं के उपग्रह बनने की कति आवश्यकता नहीं ये सत्कर मान लेना। एक बहुत से उदाहरण है जैसे सन 2005 में हरियाणा का की जो है ना नई सरकार आई उसमें दो कैबिनेट मिनिस्टर शपथ लिए थे उन्हें महीना 20 दिन हुआ था हेलीकॉप्टर से जा रहे थे क्रैश हो जाने से दोनों मर गए। अब जो उन पर मुंह धो रहे थे उनका के बने उनका के क्या देगी उसको उनकी आप नहीं पता कल टिकट कट जावे। प्रधानमंत्री एक कैबिनेट था पोलैंड का पूरा कैबिनेट यानी पूरी उसकी सारे मंत्री महामंत्री राष्ट्रपति सारे एक ही विमान दुर्घटना में खत्म हो गए एक में जा रहे थे। अब ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी थे हेलीकॉप्टर के क्रैश हो जाने से इसी जगह मेरा को पानी पीने भी ना पाया। तीन दिन में तो उनका शव मिला था, और जो उन पर मुंह धो रहे थे ये मेरा न्यू कर देगा न्यू कर देगा, तो वो केल क्या कर गया। तो पुण्यात्माओं, हमारा कहने का दास का उद्देश्य ये है कि इन राजनेताओं से हटकर तुम भगवान की तरफ चलो एक बार। और ये फिर क्योंकि इन दिन में 100 झूठ बोलने पड़े हैं, क्योंकि 10 आदमी का काम नहीं कर सकता मुख्यमंत्री एक साल में ढंग से, और ये MLA वगैरह तक कर ही क्या सकते हैं। बस ये गणत थाने में जो अपने मत के होते हैं ना उनकी सिफारिश कर देंगे, दूसरों के साथ अन्याय करवा देंगे, इतना ये कर सकते हैं, इससे अधिक इनका व्यवत नहीं है। कहने का भाव यह कि ये भी जरूरी है, आवश्यक है, ये अपना व्यवस्था बनाए रखने के लिए। और आप जी इनके पाछा अंडे जाओ हो, ये लुक जाए फिर देर फिर जाओ ना, ये कुछ कर सकते ना विकास कर पाते, तो इनका पीछा छोड़कर मालिक की तरफ चलो। अब जैसे एक राजा था, वो विशेष बात होती है जिसके पास थोड़ा सा शारीरिक सुख हो जाए और घर में भी सुख हो, दो पैसे हो जाए, वो बकवाद कराया करे। राजा लोग पहले शिकार खेलने जाया करते, यानी अपनी वो पहले तीर तैयार होया करते उन दोनों, तो ऐसे अपनी तीर प्रैक्टिस भी करते थे और मृगों को जंगली जानवरों को मारते थे निशाने ले लेकर, और फिर उनको घसीट लेते थे। वो कुछ शेर शार रखा करते चिड़िया घर में, वहां डाल देते, कुछ आप खा लेते। तो ऐसे वो जंगल में घूम रहा था, रास्ता भूल गया, भूखा मरा था बुरी तरह, वो किसान खेतों में काम कर रहा था, वहां आ गया। उसने कहा भाई मैं बहुत भूखा हूं और भूख लगी है, तो किसान ने सारी रोटी उसको दे दी और भूखा मरा था सारी खा गया। तो जब चलने लगा उस राजा ने कहा भाई मैं राजा हूं इस नगरी का, तेरा उपकार मैं भूल नहीं सकता, आपने मेरी जान बचाई है, ये मेरा कार्ड ले और जब भी तू मुझे मिलने आवे मेरे पास आना, सीधा आ जाएगा, तुझे कोई नहीं टोकेगा। तो किसान एक दिन सोचा चल अपने मित्र से मिलाए, और वे को सूखा पड़ गया, कुछ उसको राहत मांग के ले आवा। तो वहां गया तो राजा भी अपने बाहर आंगन में बैठा और ऐसे कोई क्रिया अपना धार्मिक कोई अनुष्ठान कर रहा था, भक्ति कर रहा था। अब वो किसान पहुंच गया, किसी ने टोका नहीं, वहां जा वो कर रहा था, वहां खड़ा हो गया। एक सिपाही से पूछा भी क्या कर रहा राजा, कि भगवान से अपने राज्य में सुख मांगे है और धन मांगता है। तो किसान बोला रे तेरा गजब मत, भिखारी के पास आ गया, उल्टा चल पड़ा कि मैं तो इस मांगना था, यू आप भिखारी पाया मैंने, तो मैं उसी से क्यों ना मांग लूं जिससे ये मांग रहा है, वापस आ गया। तो पुण्यात्मा ये कोड वर्ड है, समझ लेना, हम धक्के क्यों खा रहे हैं, दुखी क्यों हो रहे हैं, हम भगवान से दूर हो गए, वो परमात्मा हमें मिला नहीं, जिससे हम प्रारब्ध से न्यारा भी मांगेंगे तो भी हमें देगा, वो कबीर गॉड है, ये परमात्मा कबीर जी है, कबीर साहब है। अब आपको और दिखाते हैं इस परमेश्वर के बारे में कि देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26, इसमें क्या लिखा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ। बोलो, यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए यानी साधना करने वाले भक्तों के लिए, जो भक्ति करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को संकटों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांतिमान परमात्मा सर्वज्ञ, कविकार सर्वज्ञ कर दिया। अब ये जो कवि शब्द है कवि, ये कबीर देव, ये यहां है कबीर, ये देखो इससे इन्होंने संधि छेद करके कवि बना दिया, कवि है कबीर, अब सरल आ दिए। तो ये कबीर है, कबीर अच्यो, यहां देखो ये कबीर अलग कर दिया, अत्यो अलग कर दिया, तो इसको हम कबीर देव कहने लगे। कबीर देव ये कवि मानते हैं, तो कवि सर्वज्ञ नहीं हो सकता, परमात्मा ही सर्वज्ञ होता है, तो हम इसको कहते हैं कबीर देव, यानी कवि साहब, यानी जो कवि रूप में प्रकट होता है लोकोक्तियों के माध्यम से अपने महिमा गाता है, इसलिए वो कवि नाम से ही वो कबीर कहने लगे। हम कबीर कहने लगे, कबीर हम कवि को कवि कहते हैं, वह बोलते हैं वह को, तो हम कबीर उस कवि देव को कवि देव मान ले, इनकी बात समझे कहे ना, कवि को कैसे हम उसको कवि को तो कवि बोला, कवि कविता, कविता का अन्य बेटी का नाम हो ना कविता, तो कविता कहते हैं उसको। तो हम वेदों को हम वेद बोलते हैं, परमात्मा की वाणी में भी वेदों को वेद लिखा हुआ है, हम भी अपने लोकल लैंग्वेज में ऐसे ही उच्चारण करते हैं, तो हम उस कवि साहब को उस कवि रूप में जो प्रगट होता उस भगवान को कबीर देव कहने लगे, और वेदों उसको कवि बोला है और हम उसको कबीर देव कबीर साहब बोलते हैं। ये देखिएगा, ये और कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं, ये देखो ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 इसका मंत्र नंबर 1 में, ये देखो ये लिखा है, ये पर कबीर देव, ये पर ये कबीर देव लिखा है, कबीर देव हम इसको कबीर देव कबीर साहब वह को वह बोलने लगे और लिखन लगे अपने हिसाब से बड़ी मात्रा लाकर कबीर देव, जैसे हम उच्चारण करते हैं ऐसे लिखने लगे, तो कबीर माने कबीर और देव माने देव, हम कबीर साहब कहने लगे। इन्होंने यहां वह परमात्मा कबीर है, कवि है, वो कविता के माध्यम से जो गान करता है उच्चारण करता है, इसलिए कवि कहते हैं, हम उसको कहते हैं वो कबीर देव है, कबीर देव हम इसका अनुगान लिखते हैं, वह कबीर देव है, यहां लिखते हैं कबीर देव, तो हम उसको कबीर साहब कहने लगे, तो वो कबीर साहब है, यानी वो कबीर वही परमात्मा है। इस पर फिर आएंगे, एक बार यहां लेते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 आप पढ़ रहे हैं कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यानी भक्ति करने वाले के भक्ति करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, यानी उनके सब रास्ते खोल देता है और उनके विघ्नों को कामर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, क्योंकि परमात्मा का बहुत तेजों में रूप है, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा एक रोमकूप का प्रकाश है, तो उसको हल्का करके आता है, तेज पुंज अन्य दे धरकर इस विध हमको भेंट ही, ब्रह्मवेदी माँ परमात्मा की महिमा गरीबदास जी की वाणी में सुनते हो कि तेज पुंज अन्य दे धरकर इस विध हमको भेंट ही, ऐसे मिलता है मैं आकर के। आगे देखिएगा, अपने रूप को यानी निराकार की तरह भगवान जब रूप बता रखा वेदों में, अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, वो कबीर देव है, वो कवि है। यहां पर सर्वज्ञ का अर्थ अर्थ इसका करना ही नहीं चाहिए था, अपने आत्मा देखो इन्हीं की भाषा में, क्योंकि इन्हीं की भाषा में ये यजुर्वेद है, ये यजुर्वेद है, महर्षि दानंद द्वारा अनुवादित है, हिंदी अनुवाद इसका किया गया है, ये देखिएगा ये प्रकाशक है आर्य सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। अब इसमें आपको दिखाते हैं 6300 अध्याय आरंभ है, यानी 36वां अध्याय है प्रारंभ होता है, इसमें प्रथम मंत्र है यो, इसमें यजु शब्द लिखा है, यजु इसको यजुर्वेद कहें यजुर कहें यजु कहें, ये यजु लिखा है, इसी का अनुवाद स्वामी जी ने स्वयं महर्षि दानंद ने यहां करते हुए, ये देखो इस यजुर यजुहु हम इसको यजुर कहें तो यहां यजुर्वेद लिख दिया, ये बिल्कुल ठीक है, ये यजु भी लिखा तो भी यजुर्वेद लिखना पड़ेगा क्योंकि महिमा यजुर्वेद की चल रही है, तो इसी प्रकार यहां ये कवि शब्द है इसको कबीर देव लिखना पड़ेगा, कबीर देव है, हम उसको कबीर साहब कहने लगे, चाहे ये कवि मानते हैं कवि मान लो, इसका अर्थ कवि मान लो, लेकिन सर्वज्ञ करना ही व्यर्थ है, तो कबीर का अर्थ कवीय कर दें, हम उसको कबीर देव कहें, कबीर देव संस्कृत ही जो कि तो हमने आगे बोलना शुरू कर दिया कबीर देव, आगे हमने कबीर तो ले लिया नौकानूर साहब और कहने लगे कबीर साहब, देव कहो साहब कहो परमात्मा कहो परमेश्वर कहो। जैसे जैसे अथर्वेद कांड नंबर 4 के अनुवाक नंबर 1 के मंत्र नंबर 7 में इन्होंने खुद देव माने परमेश्वर लिखा है, तो हम कबीर कबीर देव कबीर परमेश्वर कबीर साहब ऐसे मानते हैं, ऐसे करने लगे। अपने आत्माओं ये इतना जटिल ज्ञान कर दिया इन अज्ञानी अनाड़ियों ने, इतने एग्जाम्पल और इतने प्रमाण आपको दे करके उस अज्ञान रूप अंधकार को हटा के ये यथार्थ ज्ञान आपके अंदर समाया जाता है। जैसे पुराना पेंट कहीं हो रहा हो कच्चा पक्का बेकार सा, तो उसको पहले साफ करना पड़ता है, पेंटर सबसे पहले उसने रगड़ के तार है और तब पेंट करता है अपना ओरिजिनल, तब वो अच्छा लगता है और सेट होता है सथाई होता है। तो इस प्रकार इन संतों की मेहनतों की और इन महर्षियों की पालस उतारनी पड़ती है पहले अज्ञान की, और ये पालस उतरे पाचे फिर ये परमात्मा का ओरिजिनल पेंट आपके ऊपर होगा ना तो होए को नहीं। इससे ये लोग मुझे बुरा बताते हैं कि एक निंदा करता है आलोचना करता है, अरे पढ़ कर सुनाओ मत है। तुम्हारे लिखे हुए को पढ़कर सुना रहा हूं, अगर यह आलोचना की परिभाषा बदल गई हो तो दूसरी बात है, बाकी यह आलोचना नहीं है, एक महाप्रमाण है महा उपकार है। अब जैसे पीछे होता रहता समय समय पर ये नकमी आत्माएं नकली नोट छाप लेते हैं और सरकार क्या करती है टेलीविजनों के माध्यम से अखबारों के माध्यम से जनता को ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों साथ साथ दिखाती है। तो क्या कोई ये कहे कि सरकार तो आलोचना कर रही है नकली नोट आने की, तो क्या उनकी बात ये जची? हाँ, ऐसे ही लोग इस दास के इस यथार्थ उपकार को सत्व इस महा उपकार को आलोचना कह सकते हैं जो ये नकली नोट छापते हैं, यानी वेद ज्ञानहीन जो पुस्तकें प्रचार कर रहे हैं छाप चुके हैं और जनता में बेच के रोजी रोटी चला रहे हैं, वो तो कह सकते हैं आलोचना क्योंकि उनका धंधा हो तो, लेकिन ये महा उपकार का कार्य है जो दास कर रहा है। अब हम चल रहे हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26 पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसका अर्थ है साधना करने वाले साधक के लिए परमात्मा सब रस्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, नष्ट करता है उनके आने वाले संकटों को, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, अपने रूप को यानी साकार है भगवान इन्हीं के शब्दों में, वह कांति में परमात्मा कबीर देव, हम यहां लिखेंगे कबीर देव विद्युत के समान, वो कबीर साहब विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुषों को यानी श्रेष्ठ भक्तों को प्राप्त होता है। विद्युत के समान आकाशीय बिजली जैसे गिरती है अचानक, आकाशीय जो बिजली गिरती है सेकंड के अंदर यहां लेती है, और गिरती कहां पर है वो अगले बताएंगे कि जो उनके जिन पे वो गिर सकती है जिन पर धातु पर उसी पर गिरती है। जैसे पहले कासी बेले कासी के बेले थाली गिलास कटोरे हुआ करते थे, तो बिजली अमूमन बाहर अगर रह जाता था कई बार घर के अंदर भी गिरती थी, तो वो कहते थे घर वाले कि उनके घर पर बिजली गिर गई और कासी का बर्तन था उसको पाड़गी उसको क्रैक कर दिया। वो गिरती ऐसे ही है, तो इसका अगले कारण था कि वो परमात्मा जैसे बिजली विशेष धातु पर ही गिरती है, ऐसे अच्छी आत्माओं को ही मिलते हैं शुरू में। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का मंत्र 27 हमने पढ़ लिया, ये तो इन्होंने अनुवाद कुछ करना नहीं आ रहा, यहां से पढ़ेंगे। जो परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है और प्रकाश रूप है, उसको बुद्धि वृत्तियां प्रकाशित करती है। अब ये भी सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा की तेज पुंज परमात्मा को बुद्धि वृत्तियां विषय करती हैं, जो परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, जो वहां रहता है। अब ये कहां रहता है ये थोड़ा और दिखाते हैं एक बार, तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 और इसके मंत्र नंबर 16 में ये पूछा है कि ये वेद ज्ञान बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है, सर्वपुरुष बोल रहा है, परमात्मन सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ नाम, यह संस्कृत भी देखो बीच में नाम, जो आपकी संज्ञा है आप उसका ज्ञान करें। इसका अर्थ सीधा यह बनता है कि हे परमात्मन आपका सबसे गुप्त जो सही नाम वास्तविक नाम है आप उसका ज्ञान कराएं। सीधी सी बात है। अब यहां देखिएगा, अब 17 में उसका ज्ञान कराया, उसका नाम के है शिशु जगानम हरियंतम मर्जंती सुभंती वहीन पुरुष मरुतो गणेन कवीर गिरभी काविना कवीर संत सोम पवित्र अति रेभन। ये शिशु जगानम यानी वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके जानबूझकर ज्ञान प्रकाश करने के लिए प्रकट होता है, और उसमें वो हमें जो न तत्व ज्ञान रूपी अग्नि में विरह अग्नि में जलाकर यानी साफ करता है, उसे हमें बहुत बड़े समूह मरुत माने अच्छी आत्माओं का, गणेन माने समूह, पूरे समूह को वो संबोधित करता है। कैसे कबीर गिर भी, अब कबीर गिर भी इन्होंने इसका अर्थ यहां किया है, कबीर को कवि लोग लिख दिया, गिर भी माने वाणी द्वारा, हम इसको लिखते हैं कबीर वाणी द्वारा, इस कबीर को साथ ही रखें, कबीर गिर भी लिखकर अनुवाद कर दें कबीर वाणी द्वारा, सही मेल खा गया। ये विद्वान थे तो इन्होंने ये गड़बड़ कर दी थोड़ी, और काव्य माने कविताओं से, कविताओं से यानी कविताओं के माध्यम से उच्चारण करता है। सोम स्वरूप वो अमर परमात्मा पवित्र वह परमात्मा कारण अवस्था में, ये रेभन सन गरजता हुआ यानी इसका सीधा अर्थ है वो परमात्मा कबीर है, ये कवि तो कबीर है, ये कबीर लिख दिया। संत सोम वो ऋषि या संत रूप में प्रकट होता है अमर परमात्मा, वो कबीर है और अपने कबीर वाणी द्वारा काव्यनों के माध्यम से ऊंचे स्वर में कितव खड़ा होकर आवाज लगाने लग जाता है, अपनी पवित्र वाणी को वो उच्चारण करता है। इसके कारण अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 16 में तुमने पूछा आपका नाम श्रेष्ठ नाम क्या है, जो गुप्त नाम है, और फिर 17 में उसका जिक्र कर दिया कि वो कबीर परमात्मा है, उसका नाम कबीर देव है, और वो अपनी कविताओं के अपनी वाणी को कबीर वाणी द्वारा ऊंचे स्वर में उच्चारण करके सुनाता है, और बहुत बड़े जन समूह का वो अधिपति बन जाता है गुरु। आगे बताया 17-18 में जो संत रूप में या ऋषि रूप में प्रकट होता है परमात्मा, उसके द्वारा जो दिया गया ज्ञान होता है वो उसके अनुयायियों के लिए वो अमृतवाणी बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट यानी बहुत अच्छी लगती है उनको। यह 18 और वो कहां रहता है ये भी इसमें बताया जाता है। यह 18 है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 और मंत्र नंबर 16-17 आपने पढ़ लिया। अब 18 ये रहता कहां है, ये और देखो ऋषि मना ये ऋषि कृत ये तय है सवरसा सहसर अनिथ है पदवी कवि नाम तृतीयम धामम महिष शिष संत सोम है विराजमान अनुराजती सतुप। इन्हीं के शब्दों में वह सोम स्वरूप परमात्मा वह अमर परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ जो महान वह परमात्मा तृतीयम धामम ये देवयान और पितरान इनसे अलग जो तीसरा दोनों से पृथक जो तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजम वहां रहता है विराजमान है। इन्होंने ज्ञान योगी अटा दिया, ज्ञान योगी का कोई मतलब था इसमें भगवान की महिमा चल रही ज्ञान योगी कितना है ज्ञान अब इनका कारण इन जो अनुवाद करता महर्षि दानंद के अनुयायी है, और महर्षि दानंद ने सत्यार प्रकाश में स्पष्ट कर रखा कि भगवान निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। अब ये न्यू अड़ावे हैं और वो एक देशीय नहीं है। महर्षि दानंद कहते हैं कि वो एक देशीय नहीं है, कितने एक स्थान पर नहीं रहता, वो तो सर्वव्यापक है, सब जगह कणकण में विद्वान है, ये उसकी छुरी है। और वेद कहते हैं वो एक स्थान रहता, इस कारण से इन्होंने थोड़ा घुमा दिया अर्थ को, वो ज्ञान योगी अड़ा दिया। भगवान की महिमा चल रही है, ज्ञान योगी का इसमें बीच में अड़ाने की आवश्यकता ही नहीं थी, ये अज्ञानता है। अब ऋषि मना वो संत स्वभाव के जो भगत होते हैं उनके लिए उस ऋषिकृत यानी संत रूप में या ऋषि रूप में भगत रूप में प्रगट परमात्मा द्वारा कवि रूप में जो बोली गई वाणी है वो बहुत उनको अच्छी लगती है, परमात्मा की वाणी बहुत प्यारी लगती है, इसका अर्थ ये। अब हम फिर आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 पे, देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और मंत्र नंबर 1। जो सर्वोत्पादक प्रभु यानी सबका उत्पन्न करने वाला परमात्मा प्रकाश रूप सद गुणों की वृष्टि करने वाला पापों के हरण करने वाला यानी पाप नाश करने वाला है, वह राजेव राजा के समान देखने योग्य है, साकार है, दर्शनीय है, समान दर्शनीय है, राजा के समान दर्शनीय है यानी साकार है, और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्देमान हो रहा है, वह वर्णीय पुरुषों को और श्रेष्ठ भक्तों को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। आगे देखो, जिस प्रकार विद्युत यानी आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को यानी काशी के धातु पर आधार बनाकर प्राप्त होता है गिरती है, इसी प्रकार उक्त गुणों वाला परमात्मा इसी ब्रह्मांड को उत्पन्न किया है। अब इसका इन दड़ंगा करने का मतलब था, इसका अर्थ सीधा है कि वो परमात्मा उन दृढ़ भक्तों को जो परमात्मा के सच्चे प्यारे हैं उनको आकर ऐसे मिलता है, उन्हीं को क्यों मिलता है, ये डिफाइन किया है कि जैसे बिजली उन्हीं पर आकर गिरती है जो उसके अनुकूल है धातु, तो ऐसे ही मान ले वो परमात्मा आया उसका ज्ञान समझाना चाहते हैं और जो अनाड़ी व्यक्ति हैं वो मजाक किया, उनका डड़े मारे, पत्थर मारे, उन तक के मिला, फिर उनको मिला जिन्होंने मालिक की वाणी स्वीकार किया, आगे फिर डोल के डंके पर विस्तार प्रमाण किया और प्रचार किया। उनमें से कौन कौन है, आदरणीय मलुकदास साहेब जी, आदरणीय धर्मदास साहेब जी, आदरणीय दादू साहेब जी, आदरणीय गरीबदास साहेब जी छुड़ानी वाले हरियाणा में, आदरणीय नानक साहेब जी, आदरणीय गीसा दास साहेब जी, इन छह के बारे में दास को पता है जिनको परमात्मा उन श्रेष्ठ आत्माओं को दृढ़ भक्तों को आकर मिले, फिर उन्होंने आगे पूरे विस्तार के साथ परमात्मा की महिमा का गुणगान किया, आंखों देखा, सतलोक को देखा, फिर बताया। तो गरीबदास जी कहते हम देखा सो साच है और सकल प्रपंच, हमने जो देखा वो साची है, बाकी सब उआ भाई बोल रहे, ये अनदेखी कहते हैं, ये अनुभव नहीं है। और ये स्पष्ट है वेदों को पढ़ने पर वेद ना जाने, ये देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर आपने 1 पढ़ लिया और 2 में उसका उद्देश्य बताया उस परमात्मा का, वो किस लिए आता है। हे परमात्मा, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञों को प्राप्त होते हो, यानी बहुत तेज स्वभाव गति से आते हो, और आप सर्वज्ञ नहीं, वो यजुर्वेद की तरह लिखना, आप कबीर देव हैं, आप कबीर देव हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे सोम हे अमर परमात्मा आप हमको सुख दें, प्रेम की प्रेम भाव को उत्पन्न करते हुए पवित्रों को पवित्रता को उत्पन्न करें। अब इसमें उद्देश्य भी बता दिया कि आप कबीर देव हैं, कबीर, और किस लिए आते हो कि आप ज्ञान प्रचार करने के लिए उपदेश करने की इच्छा से आप बहुत तीव्रता से आते हो, और परमात्मा भी कहते हैं पहुंचूंगा क्षण एक में छिन्न एक में जन्म अपने के काज। नानक साहब जी कहते हैं नीच जात परदेसी मेरा, और छिन आवे छिन जावे वे, वो तुम जिसको छोटी जाति कहते हो वो भगवान है मेरा, वो मालिक है सबका, और एक पल में ऊपर एक पल में मेरे पास, यानी वही महिमा हम वो आंखों देखा संत परमात्मा की गा रहे हैं, और वही हमारे ये प्रमाणित सदग्रंथ बता रहे हैं। अब देखिए